बाइबल में परमेश्वर ने प्रकट किया है कि वह एक है, परंतु पुराना नियम कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाता है जिनका हल बात तक नहीं सुलझाया गया। उदाहरण के तौर पर रचना के समय परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जब परमेश्वर हमें इतनी स्पष्टता से बताते हैं कि वे एक है, तो हम शब्द क्यों? नए नियम में परमेश्वर ने खुलासा किया है कि वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। परमेश्वर प्रेम है, और जब कुछ और अस्तित्व में नहीं था तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच प्रेम बहता था। 17:36 पिता, अपनी बाइबल में मती 11 खोले। एक बूढ़े पादरी की बोहे सिकुड़ गई जब उन्होंने अपना आधा चांद के आकार के चश्मे को थोड़ा सरकाकर ऊपर की ओर बिखरी हुई मंडली को देखा और उस संदेश को शुरू किया जिस पर वे पूरे सप्ताह विचार कर रहे थे। पहले उन्होंने धीरे से कहा, मैं उस चीज की खोज करने जा रहा हूं जिसे खोजा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं ना समझ में आने वाली बात समझाने जा रहा हूं। और अंततः वे थोड़े रुके शब्दों को खोजने के लिए, मैं गुण रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं। मैं इतना महत्वाकांक्षी नहीं हूं, और विस्मय की भावना के साथ मैं पूरे ईसाई धर्म में सबसे विशिष्ट परंतु सबसे कठिन सिद्धांत के बारे में लिखता हूं। एक ही परमेश्वर है, और वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के स्वभाव को समझने की उपेक्षा ना करें। मछली को मानव स्वभाव की बहुत ही सीमित समझ हो सकती है, और उसी तरह परमेश्वर के स्वभाव को समझना हमारी क्षमता से परे है। यदि हमें वास्तव में परमेश्वर को जानना है, तो हमें उन्हें पिता, पुत्र और आत्मा के रूप में अनुभव करना होगा। मती के सुसमाचार के अंत में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ है डुबाना या भिगोना। ईसाई जीवन पूरी तरह से पिता में सराबोर होने, पुत्र में डूब जाने और आत्मा में भीगने के बारे में है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन के हर हिस्से में व्याप्त है। आप पुत्र के बिना पिता को या आत्मा के बिना पुत्र को नहीं जान सकते। इसलिए यद्यपि हम परमेश्वर के स्वभाव को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, यदि हमें परमेश्वर को उनके स्वरूप के रूप में जानना है, तो हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में जो कुछ भी प्रकट किया गया है उसे अवश्य समझना चाहिए। हम तीन कथनों में संक्षेपित कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वभाव के बारे में हमें क्या बताया है। सबसे पहले, एक ही परमेश्वर है। यह पुराने और नए नियम दोनों में स्पष्ट है। परमेश्वर कहते हैं, हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यह व्यवस्था विवरण 6:4 में है। एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर और पिता है। इफिसियों 4:5-6 में यह लिखा गया है। ईसाई तीन परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते। परमेश्वर एक है। दूसरा, ईश्वर तीन व्यक्तियों में विद्यमान है। पिता, पुत्र और आत्मा की विशेष पहचान पूरे नए नियम में लिखी गई है। पिता पुत्र को भेजता है, पुत्र पिता से प्रार्थना करता है, आत्मा पुत्र की महिमा करता है और पुत्र आत्मा भेजता है। परमेश्वर के तीन व्यक्तियों से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। पिता क्रूस पर नहीं मरे, पुत्र ने स्वयं को संसार में नहीं भेजा, आत्मा मृतकों में से नहीं जी उठा। परमेश्वर एक है और वो तीन व्यक्तियों में विद्यमान है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः परमेश्वर है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और आत्मा परमेश्वर है। मसीह ने कहा, मैं और पिता एक है। उन्होंने सृष्टि के शुरू होने से पहले पिता की महिमा साझा की। पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु की उपस्थिति उनके शिष्यों के साथ थी, भले ही वे पिता के पास लौट रहे थे। यदि आत्मा उनके साथ था तो मसीह उनके साथ थे, और यदि मसीह उनके साथ थे तो पिता उनके साथ थे। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और आत्मा परमेश्वर है, परंतु तीन अलग परमेश्वर नहीं है। एक शाश्वत परमेश्वर है और वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। सदियों से लोगों ने परमेश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए समानताओं का उपयोग करने का प्रयास किया है, परंतु यदि प्राकृतिक दुनिया में कोई समानता होती जो हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझने में मदद करता, तो निश्चित रूप से परमेश्वर ने इसे बाइबल में रखा होता। त्रिएकत्व की समानताएं आमतौर पर हमें सत्य के एक हिस्से को देखने में मदद करती है, परंतु साथ ही वे किसी और चीज को विकृत या अस्पष्ट कर देती है। कुछ लोग एक व्यक्ति जो तीन विभिन्न भूमिकाएं निभा रहा है उसकी समानताओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पादरी कहते हैं कि वे एक पति, एक पिता और एक पादरी है, परंतु ये समानता कम पड़ जाती है क्योंकि इन तीन भूमिकाओं को पूरा करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। परमेश्वर तीन व्यक्तियों में विद्यमान है। पिता पुत्र नहीं है और पुत्र आत्मा नहीं है। पादरी कहते हैं कि एक बार जब वे स्कॉटलैंड में एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो एक धुंध नीचे घाटी में शहर के ऊपर आ गई और बस गई। वे शहर नहीं देख पा रहे थे, परंतु वे उसके चारों ओर सब कुछ देख सकते थे। परमेश्वर के स्वरूप के बारे में सोचते समय उन्हें वह चित्र उपयोगी लगता है। त्रिएकत्व का सत्य धुंध में छिपा हुआ है। हम ये नहीं समझ सकते कि एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में कैसे विद्यमान हो सकता है, परंतु हम स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि सत्य की सीमा से परे क्या है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कहता है कि मसीह परमेश्वर से कम है या कि कई देवता है, तो हम शास्त्रों से तुरंत देख सकते हैं कि यह सत्य से बाहर है। कोहरा सत्य को ढक देता है, परंतु जो सत्य के बाहर है उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। परमेश्वर का स्वरूप एक रहस्य है, परंतु यह कोई विरोधाभास नहीं है। यदि ईसाई लोग इन दोनों बातों को मानते हैं कि परमेश्वर है और तीन देवता है, तो ये एक विरोधाभास होगा। या यदि हम ये मान ले कि तीन व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, तो ये विरोधाभास होगा। परंतु यह कहना कि एक परमेश्वर है जो तीन व्यक्तियों में विद्यमान है, कोई विरोधाभास नहीं है, यह एक सत्य है। आपको इस रहस्य पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सबसे पहले, इससे मुंह न मोड़े। यदि आप परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी नहीं समझते उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो आप उनके अथाह वैभव की महिमा से चूक जाएंगे। दूसरा, इसे समझाने की कोशिश ना करें। आप उस स्थान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप यह कह सके, अब यह सब मुझे पूरी तरह से समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। परमेश्वर आपको वहां कभी नहीं पहुंचने देंगे। तीसरा, इसे आपको आराधना की ओर ले जाने दे। आप पूरे अनंत काल तक परमेश्वर की महिमा पर आश्चर्य करते हुए बिताएंगे, इसलिए जो कुछ उन्होंने पहले ही प्रकट किया है उसके आश्चर्य के जवाब में अपनी आराधना शुरू करें। तो हम ऐसे परमेश्वर के पास कैसे आ सकते हैं जो इतना महान है कि हम उनके स्वभाव को समझ नहीं सकते? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं तो आप कई तरीके अपना सकते हैं। यदि आप उसकी पत्नी को जानते हैं तो वे आपको उनसे मिलवा सकते हैं, या यदि आप राज्य सचिव या किसी प्रमुख अधिकारी को जानते हैं तो वे आपको वहां प्रवेश दिला सकते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के करीब कई लोग हैं, परंतु पिता परमेश्वर के करीब कौन है? और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, यीशु कहता है। परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इसका तात्पर्य यह है कि यीशु ही एकमात्र है जो हमें पिता के पास ला सकते हैं। यदि हम जानना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा लगता है तो हमें यह देखकर शुरुआत करनी चाहिए कि यीशु के लिए इसका क्या अर्थ है। मसीह हमें एक ऐसे रिश्ते में आमंत्रित करते हैं जिसमें हम पिता के अधिकार के अधीन हैं। आप यीशु के जीवन में इससे चूक नहीं सकते। उनका पूरा जीवन पिता के उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ था, और इस बात को गतसमनी के बगीचे से अधिक स्पष्ट रूप से कभी नहीं देखा गया था, जहां यीशु ने कहा था, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यदि हम परमेश्वर को पिता के रूप में मानते हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या हम उनके अधिकार के अधीन रहने के लिए तैयार है, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। ईसाई जीवन की शुरुआत तब होती है जब आप यह कहने के स्थान पर आते हैं, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यदि आप पिता के प्रेम को जानना चाहते हैं तो आपको खुद को उनके अधिकार के प्रति समर्पित करना होगा। जिस रिश्ते के लिए यीशु हमें आमंत्रित करते हैं वह भी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम उसी प्रेम का आनंद लेते हैं जो पिता अपने पुत्र के लिए रखते हैं। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। परमेश्वर के प्रेम की क्षमता क्या है? परमेश्वर अपने अस्तित्व में शाश्वत, अपनी शक्ति में असीमित और अपने ज्ञान में अनंत है। उनका प्रेम पृथ्वी पर हमारी समझ से परे और स्वर्ग में स्वर्गदूतों की समझ से भी अधिक है। हम आराधना, आश्चर्य, प्रेम और स्तुति में खो जाएंगे जब स्वर्ग में परमेश्वर के प्रेम की पूरी सीमा हमारे सामने प्रकट होगी। और ये पवित्र आत्मा का विशेष कार्य है कि वह हमें बताए कि अभी भी हमें इसी तरह प्रेम किया जाता है। जो लोग पिता के प्रेम में भागीदार हैं वे उनकी महिमा में भी भागीदार होंगे। यीशु ने कहा, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। ऐसे समय आएंगे जब पिता के अधिकार के अधीन होना बहुत महंगा होगा, परंतु पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि यह उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यीशु के लिए परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जानने का अर्थ था उनका अधिकार के प्रति समर्पित होना, उनके प्रेम का आनंद लेना और उनकी महिमा को साझा करना। जब यीशु हमें अपने माध्यम से पिता के पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं तो वे हमें उसी तरह के रिश्ते में आमंत्रित करते हैं। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। परमेश्वर एक है और वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। यह एक रहस्य कैसे हो सकता है? परंतु हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी समझ की क्षमता से भी बड़ा है। परमेश्वर को पिता के रूप में जानना हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, हमें उनके साथ रिश्ते में लाने की जरूरत है। और यही कारण है कि यीशु मसीह दुनिया में आए, वह पिता की ओर से उन्हें ज्ञात कराने और हमें पिता के पास लाने के लिए आए थे।